نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آمين يا رب العالمين. ہم کر رہے ہیں تجلیات نبوت کتاب میں غزوہ تبوک کے بارے میں. ہم نے پڑھا ابھی تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے 30,000 کا لشکر لے کر. راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے جو ہم نے پڑھ لی ہیں. الحمدللہ سواریوں کی قلت تھی، بھوک تھی، گرمی کا وقت تھا، تو اس میں کس طرح سے صحابہ کرام نے صبر کیا اور اپنی بھوک آنے کے لیے کس حد تک یعنی وہ مجبور ہو گئے کہ اپنی سواریوں تک کو ذبح کرنے، اسی طرح درخت کے پتے کھانے پڑے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین بہت کم ساتھ گئے تھے، اکثر کچھ نہ کچھ بہانہ کر کے پیچھے رہ گئے تھے مدینہ میں، اور کچھ نے تو جانے سے پہلے بہانے کیے اور کچھ نے واپس آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بہانے بتائے. اور بجائے اس کے کہ اس جنگ کے لیے کچھ وہ ڈونیشن دیتے، الٹا انہوں نے مسجد زرار بنانے کے لیے آپس میں فنڈ اکٹھے کر کے اس کے اوپر لگانے شروع کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ راستے میں کی بستی اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ نے وہاں سے پانی لیا تھا اس کو بہا دینے کا حکم دیا تھا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون کون سے صحابہ تھے جو لیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے، لیکن یہ اچھا ہو گیا کہ وہ ایٹ لیسٹ لیٹ آئے لیکن مل گئے تھے، کیونکہ تین صحابہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ بالکل پکے سچے ایمان والے تھے لیکن وہ نہیں آ سکے تھے. تو بیچ میں حضرت علی نے بھی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ منافقین اس طرح سے تانے دے رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جان بوجھ کے ساتھ نہیں لے کر گئے کیونکہ وہ کسی قابل نہیں ہیں اور تانے دے رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت بڑی یہ بات فرمائی تھی کہ آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. تو یہ ہم نے سب دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ تبوک کے اندر جتنی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹے رہا، آپ نے قیصر روم کے لیے خط لکھا تھا، اور پھر وہ تنوخی آیا تھا، اور اس نے اس کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، وہ ساری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے اس کے علاوہ دیکھا کہ چونکہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا 20 دن تک، تو ظاہر ہے بہت ساری یعنی ایونٹس پیش آئے یہاں پر، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ جو ارد گرد کے قبائل تھے بہت سارے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے. انہوں نے آ کر اور پھر آپ کے ساتھ معاہدے کیے، اور اس طرح سے یہ ایک بہت ہی پازیٹو سفر بن گیا. کیونکہ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ سارے جو قبائل تھے یہ یعنی بارڈر پر تھے، اور وہاں پر ایک طرح سے جب یہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے تو ایک طرح سے ایک دیوار بن گئی کہ باہر سے دشمن اب اندر مسلمانوں تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ یہ لوگ اس کو نہیں گزرنے دیں گے اور یہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اب یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. تو مسلمانوں کو ایک سمجھ لیں اپنے حریف مل گئے یہاں پر کہ جو ان کے ساتھ دینے والے تھے، اور حالانکہ یہ قبائل مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے معاہدات کیے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ معاہدے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو امان لکھ دی تھی. اور انہی میں ایک واقعہ آتا ہے دومۃ الجندل کا، اور وہاں اقیدر کی گرفتاری. اقیدر کون ہے؟ جو دومۃ الجندل کا یعنی سمجھ لیں ان کا بادشاہ، وہاں ان میں بادشاہت تھی، تو یہ بادشاہ تھا. اور یہ کون سا قبیلہ ہے؟ یہ وہ قبیلہ ہے جس کی قیصر و روم کے ساتھ بڑے مضبوط تعلقات تھے، اور یہ بہت بہادر قبیلہ بھی تھا، بہت مضبوط قبیلہ تھا. تو ये बादशाह जो था इनका, ये कबीले बादशाह कह सकते हैं, बादशाहत एक्चुअली उनमें चलती थी, इसलिए मैं कह रही हूँ बादशाह, कि ये जो था उकैदिर नाम का था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में एक दस्ता भेजा था इसकी तरफ, और ये तकरीबन 400 लोग थे जो हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ गए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद से फरमा दिया था कि तुमको उकैदिर मिलेगा, अपनी फ़ौज से अलग होगा वो और गायों के दरमियान मिलेगा तुम्हें, यानी नील गायों के दरमियान तुम्हें मिलेगा। तो ये वाक़या थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम इंशाल्लाह इसको पढ़ लेंगे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को इनकी तरफ भेजा, दूमतुल जंदल के हाकिम उकैदिर की तरफ, और फरमाया तुम उसे नील गाय का शिकार करते हुए पाओगे। हज़रत खालिद बिन वलीद जब वहाँ तशरीफ़ ले गए तो जब इतने फासले पर रह गए थे कि किला उनका दूर से नज़र आ रहा था, तो अचानक एक नील गाय निकली और किला के दरवाजे पर सींग रगड़ने लगी। उकैदिर को शिकार का शौक़ था, वो निकला और चांदनी रात थी, हज़रत खालिद बिन वलीद और उनके सवारों ने उसको जा लिया, गिरफ़्तार कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो ये कुछ वाक़या हुआ था। अब जाहिर है वो अकेला था तो 400 सहाबा का तो वो मुकाबला नहीं कर सकता था, और वो तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई इस तरह से कोई बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। वो तो एक शिकार करने के लिए निकला, और देखिए कहाँ पे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई भी सच साबित हुई, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को कहकर भेजा था। तो ये अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वाक्या बुक से, पेज नंबर 328 है, दूमतुल जंदल के उकैदिर की गिरफ्तारी। अब समझ आ गई ना उकैदिर कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को 420 सवारों की माईयत में, यानी उनको साथ दे के उनके दूमतुल जंदल के उकैदिर की तरफ रवाना किया और फरमाया कि तुम उसे नील गाय का शिकार करते हुए पाओगे। हज़रत खालिद तशरीफ़ ले गए, जब फासला इतना रह गया कि किला नज़र आ रहा था, तो ये एक नील गाय निकली और किले के दरवाजे पर सींग रगड़ने लगी। उकैदिर इसके शिकार को निकला, मगर खालिद रज़ी अल्लाह तआला ने खुद उकैदिर को शिकार कर लिया और उसे गिरफ्तार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान बख्शी फरमाई और 2,000 ऊँट, 800 गुलाम, 400 जिरें और 400 नेज़ों पर सुलह फरमा ली। यानी वो आया और उसने कहा कि भाई मैं सुलह करना चाहता हूँ और मैं कभी भी मुसलमानों पर हमला नहीं करूँगा और इसी तरह कभी भी रूमियों का साथ नहीं दूंगा। ये भी एक बहुत बड़ी देखिए कामयाबी थी मुसलमानों के लिए, क्योंकि जब ये एक बड़ा कबीला था, बड़ा बहादुर कबीला था, जब इसके साथ और दूसरे कबाइल के साथ सुलह सफाई हो गई है, तो अब समझ लें कि एक शील्ड बन गई रूमियों के खिलाफ यहाँ पे। तो इसने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कीमती तोहफे भी दिए थे, और यहाँ पे जैसे आगे पढ़ लेते हैं, इसने ईला और मैना वालों की शराइत पर जिजिया भी देने का इकरार किया। इस तरह ये कहा जाता है कि ये जो हुक्मरान था, इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बड़े कीमती तोहफे भी भेजे थे, और उनमें एक तोहफा था रेशम से बना हुआ एक जुब्बा। रेशम से इस जुब्बे में सोने की बारीक तारों को बुना गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ज़ेबतन फरमाया। उस वक़्त तक कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम का पहनना मना नहीं फरमाया था। वैसे तो आपको पता है कि मुसलमान मर्दों के लिए रेशम पहनना हराम है। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेबतन फरमा कर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू नहीं फरमाई और मिंबर से नीचे तशरीफ़ ले आए। लोग उस जुब्बे को हाथ लगा लगा के देख रहे थे और हैरान और शुष्दर रह रहे थे, यानी इतने इम्प्रेस्ड थे लोग कि ये यानी उन्होंने कभी देखा नहीं था। अब इससे सहाबा कराम की या मदीना के लोगों की भी आप एक माली हालत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इसे देखकर हैरान हो रहे हो? वो कहने लगे, हमने ऐसा हसीन लिबास जिंदगी में कभी नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में साद बिन मुआज के जो रुमाल हैं वो इस जुब्बे से कहीं ज़्यादा बढ़कर हसीन है जिसे तुम देख रहे हो। यानी उनका एक रुमाल भी इस जुब्बे से कहीं ज़्यादा हसीन है। और ये जुब्बा क्या था, यानी सोने की तारों से बुना, मतलब कितना कीमती होगा सोचें, और प्योर सिल्क का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से सहाबा का देखें जहन कहाँ डाइवर्ट करवाया, सुभान अल्लाह, इसमें बड़ा सबक है हमारे लिए। क्योंकि जब हम दुनिया की ऐसी कई चीज़ें देखते हैं, कई लिबास, कई घर, कई बनाओ सिंगार की चीजें, जेवरात, तो इतनी इंप्रेस हो जाते हैं हम बाज दफा, और इस कदर इतनी इस चीज को समझ लेते हैं ना कि ये अल्लाह अकबर, कि यही सब कुछ है, और यही ये कितनी हसीन चीज है, और ये बस मुझे मिल जाए, और क्या बात है इसकी, और हमारी आंखें खीरा हो रही होती हैं उसको देखकर। लेकिन यहाँ पे जब सहाबा थोड़े से भी इम्प्रेस नजर आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कैसे डाइवर्ट फरमाया कि वो जन्नत जो है ना, उसमें साद बिन मुआज, याद है आपको साद बिन मुआज, जंगे अहज़ाब का याद है आपको किस्सा, कि कैसे उनकी शहादत हुई थी साद बिन मुआज की। उनका जो रुमाल भी है ना, वो भी इससे कहीं ज्यादा बेहतर है जो तुम देख रहे हो। देखिए, इस तरह से हमें भी करना चाहिए कि जब जहन में यहाँ की चीजों की मरूबियत पैदा हो ना, दुनिया की चीजों की, कि आपको दिल लगे कि मरूब हो रहा है, दिल इंक्लाइन हो रहा है, दिल इंप्रेस हो रहा है यहाँ की चीजों से, तो उस वक्त फौरन जन्नत के इन नेमतों को, और जन्नत के घर, जन्नत के लिबास, जन्नत के जेवर, और जन्नत की और जो वहां की हसीन बातें आप कुरान में पढ़ते हैं, उनको याद कर लिया करें, ताकि दिल से ये मरूबियत जाती रहे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा असर छोड़ती है, फिर इंसान फिर इन्हीं चीजों के पीछे दीवाना हो जाता है, तो अपने आप को उससे निकालने का ये बेहतरीन तरीका है। अल्लाह अकबर। और ये दोमतुल जंदल जो था ना, ये तबूक से दाई जानिब था, और ये भी थोड़ा सा आप लिख लें अपने पास के, तकरीबन 350 किलोमीटर्स के फासले पर वाक़े था, और इसके दूसरे सिरे पर शाम का इलाका था। तो इस दोमतुल जंदल की वादी को सरहान कहा जाता था, आजकल ये अलजौफ के नाम से मशहूर है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में था। अब इसके अलावा जितने दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे रहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिर है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहीं, इनमें एक ये था कि आपने वहाँ पे बड़े बलीग खुतबात भी इरशाद फरमाए, जिसमें से सिर्फ एक खुतबा मैं आपके सामने रखूँगी जो यहाँ पर नहीं है, मगर उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात किस तरह के होते थे, और कितने बलीग खुतबात होते थे, यानी वो कितने कॉम्प्रिहेंसिव थे, शॉर्ट थे, टू द पॉइंट थे। एक खुतबा उकबा बिन आमिर अज्जुहनी ने रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में एक अजीम शान खुतबा भी दिया था। ये खुतबा मैं आपको किताब उसवा हसना इससे पढ़ के बता रही हूँ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद फरमाया, ए लोगो, यानी अम्मा बाद के बाद, अम्मा बाद भी जैसे आपको बताया था दाऊद अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अम्मा बाद फरमाया, और अब हमें भी ये है कि हम खुतबा जब दें तो उसमें अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद अम्मा बाद कहें। ए लोगो, सबसे सच्ची बात किताबुल्लाह की है, सबसे बड़ा सहारा तकवा है, सबसे अच्छी मिल्लत यानी तरीका मिल्लत इब्राहिमी है, सबसे बेहतर सुन्नत सुन्नत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे अच्छी बात जिक्र इलाही है, सबसे उम्दा दास्तान कुरान है, सबसे अच्छे काम अजीमत के काम है, यानी जो कामों में भी नेकियों में भी जो टॉप की होती हैं, सबसे बुरे काम, सुन लें, सबसे बुरे काम बिदत के काम है, सबसे बेहतर रास्ता अंबिया का रास्ता है, सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा मुअज्जज मौत यानी इज्जत वाली मौत सबसे ज्यादा कौन सी है, शहादत की मौत है, और बदतरीन अंधापन, अंधे तो बहुत से लोग होते हैं लेकिन वर्स्ट जो अंधापन है ना, वो हिदायत के बाद गुमराही है, कि अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे दे उसके बाद वो फिर गुमराही के रास्ते पर चल पड़े। इसलिए दुआ करते रहा करें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना, अल्लाह हमें अब गुमराह ना कर देना, हमारे दिल को टेढ़ा ना कर देना हिदायत देने के बाद, क्योंकि बहुत से लोग मैंने खुद भी देखे हिदायत की तरफ आते हैं उसके बाद फिर बड़े जोश से आते हैं, बड़े जोश से काम करते हैं, ऐसे लगता है कि इनके दिल को कितनी बात असर कर गई है, जिंदगियां भी बदलते हैं उसके बाद फिर वापस उसी रास्ते की तरफ चले जाते हैं। استغفراللہ، سب سے اچھا کام وہ ہے جو نفع پہنچائے، یعنی کیسا نفع، یعنی آخرت میں جس کا نفع ہو وہی اچھا کام ہے، باقی بیکار ہیں سب، سب ایکٹیویٹیز ایسے ہی ہیں، وہی ہیں جو آپ کو نفع پہنچائے آخرت میں. سب سے اچھی راہ وہ ہے جس کی پیروی کی جائے، بدترین تاریکی یعنی اندھیرا جو ہے وہ دل کی تاریکی ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ان میں جو ایک ایک لائن ہے نا وہ الگ الگ سے ہم نے احادیث میں پڑھی بھی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا یہ اس کا ایک حصہ ہے. دیکھیں ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو وہ اس خطبے میں آپ نے فرمایا. پھر آگے بھی یہ جو بات ہے یہ بھی آپ نے سنی بھی ہے لیکن یہ اس خطبے کا حصہ ہے، جو چیز کم ہو مگر ضرورت بھر کی ہو، یعنی آپ کی ضرورت پوری کرے، مال میں سے چاہے کم ہو مگر آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہو، اس سے کہیں بہتر ہے جو زیادہ ہو مگر غفلت میں ڈالے. سبحان اللہ، زیادہ انسان زیادہ مانگتا ہے لیکن اگر وہ زیادہ غفلت میں ڈال دے تو وہ برا ہے، اس سے بہتر وہ کم مال ہے جو کم از کم آپ کی ضرورت پوری ہو رہی، دیٹس اٹ. آپ کے سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں وہ کافی ہے، بجائے اس کے کہ اتنا زیادہ ہو کہ انسان غافل ہی ہو جائے. کیونکہ اکثر جو مال کی کثرت ہوتی ہے وہ غفلت لے آتی ہے انسان کو، پھر کہتا ہے کہ وہ مجھے کیا پرواہ ہے، سب کچھ تو میرے پاس ہے، میں نے کیا اللہ اللہ کرنا ہے، ضرورت ہی نہیں مجھے. بدترین توبہ، آپ سوچ سکتے ہیں کوئی توبہ بدترین بھی ہو سکتی ہے؟ کون سی آپ سوچیں کہ ہوتی ہوگی توبہ جو بدترین ہو؟ فرمایا وہ ہے جو موت کے وقت کی توبہ ہے. بدترین ندامت، بدترین ندامت آپ سوچتے ہیں کون سی ہوگی، بتائیں، سوچیں. بدترین ندامت یعنی جس میں انسان ریگریٹ کرتا ہے، وہ ورسٹ ریگریٹ کون سا ہے؟ جو قیامت کے دن کی ندامت ہوگی، اس وقت کیا فائدہ. یعنی بہت سے لوگ ہیں جو پشت پھیر کے جمعے کا استقبال کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی جمعے کو کبھی کبھار آتے ہیں، زیادہ تر جمعے کا دن وہ اپنا یعنی جمعے کے بغیر ہی گزار دیتے ہیں. بہت لوگ ہیں جو خدا کو کبھی یاد نہیں کرتے. سب سے بڑی خطا جھوٹی زبان ہے، یعنی سب سے بڑی غلطی ہے جو انسان کی جھوٹی زبان ہے. سب سے بڑی دولت دل کی دولت ہے. سب سے بہتر توشہ، توشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو زیادہ راہ ہوتا ہے جو مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے نا راستے میں، یعنی پہلے زمانے کے اندر بھی جو کھانا پینا یا کچھ اپنا تھوڑا سا سامان ہوتا ہے وہ توشہ تقویٰ ہے. سب سے بڑی دانائی مخافت الہی ہے، یعنی خوف خدا جو ہے نا وہ سب سے بڑی دانائی ہے، وزڈم ہے. جس جو وائز بندہ وہی ہے جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، ورنہ بے وقوف ہیں جو باقی ہیں. دل میں راسخ ہونے والی سب سے اچھی چیز یقین ہے، یعنی یقین اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر، قرآن پر، یہ سب یقین ہے. شک کفر کی ایک شاخ ہے، یعنی یہ بھی ایک برانچ ہے کفر کی، شک، کہ دل میں شک آ جائے، پتہ نہیں قیامت ہے کہ نہیں، پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں رسول آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں. یہ جو شک ہے نا یہ کفر کی ایک شاخ ہے. میت پر نوحہ جاہلیت کی خصلت ہے. مسلمانوں کے مال میں خیانت، سن لے، مسلمانوں کے مال میں خیانت جہنم کی گرمی ہے. شراب گناہ کا سرچشمہ ہے، یعنی سمجھ لیں کہ اس سے پھر اور کئی گناہ پھوٹتے ہیں نا، ام الخبائث جو کہا گیا. بدترین ذریعہ معاش یتیم کے مال کا کھانا ہے، یعنی سب سے بری جو انسان کی روزی ہے وہ کیا ہے کہ یتیم کا مال کھانا. خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کر لے، یعنی دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھ لے، خود سیکھ لے سبق، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی مسئلہ آئے تو پھر سیکھے گا، دوسروں سے نصیحت لے لے. عمل کا مدار اس کے خاتمے پر ہے. یہ تو ہم پہلے بھی کئی دفعہ اس اتنی سے پورشن کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان کے عمل کا دار و مدار کس کے خواتیم پہ ہے، یعنی کس کے اوپر، یہ جو خاتمہ کس پہ کرتا ہے، وہ شروع سے بہت اچھا کرتے گئے، اینڈ آ کے ورس کر دیا تو سب کچھ ختم ہو گیا، پچھلا کیا کرایا سب غارت ہو گیا. ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان دیکھیں ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے اور ان دا اینڈ آ کے وہ کوئی خرابی کر جائے تو اس کا خاتمہ کس کے اوپر ہوا، برائی کے اوپر خاتمہ ہوا. بدترین خواب جھوٹا خواب ہے, اس سے بھی لوگ ڈرتے نہیں ہیں کہ وہ بعض دفعہ جھوٹے خواب بیان کرنے لگتے ہیں, ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی, ہم نے تو یہ خواب میں دیکھ لیا, ہم نے وہ خواب. یہ جھوٹا خواب جو بیان کرنا ہے وہ بدترین ہے, بدترین خواب ہے. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک گناہ ہے. مسلمان کا قتل کفر ہے, سن لیں, مسلمان کا قتل کفر ہے. غیبت کر کے مسلمان کا گوشت کھانا معصیت ہے, یعنی نافرمانی ہے. مسلمان کے مال کی حرمت اس کی جان کی حرمت کے برابر ہے, یعنی اس کی مال اس کا ہڑپ کر جانا ایسے ہی ہے جیسے اس کی جان ختم کر دینا. جیسے اس کی جان لینا حرام ہے, اسی طرح اس کا مال لینا بھی حرام ہے. جو معافی مانگتا ہے خدا اسے معاف کر دیتا ہے, جو غصہ پیتا ہے خدا اسے اجر دیتا ہے, جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دیتا ہے جو اس سے لے لیا ہے اس نے, جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے عذاب میں ڈالے گا. اور پھر اللہم اغفر لی و امتی فرمایا, اس کے بعد تین مرتبہ استغفر اللہ فرمایا اور خطبہ ختم کر دیا. یعنی یہ بڑا ہی پیارا خطبہ تھا, اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو میں سنا دوں یہ خطبہ. یہاں پہ چونکہ موجود نہیں ہے تو پھر وہ رہ جاتی ہے تھوڑی بات. اس کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیا کیا اتنے دن میں, ایک تو یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو وضو فرمایا اس میں ایک ایک دفعہ اپنے اعضاء کو دھویا, اس لیے کہ پانی کی سخت قلت تھی, تو اگر تین تین دفعہ دھویا جاتا تو یعنی پھر وہ پانی ظاہرہ قلیل ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتا. ایک اور واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ آج رات تم پہ سخت آندھی چلے گی, لہٰذا نہ کوئی اٹھے, اور جس کے پاس اونٹ ہو وہ اس کو اس کی رسی کو بھی مضبوطی سے باندھ دے, کوئی بھی نہ یعنی اٹھے آج کی رات. چنانچہ سخت آندھی چلی, ایک شخص کھڑا ہو گیا تو آندھی اس کو اڑا کر تین کی دو پہاڑیوں کے درمیان پھینک آئی, یعنی اٹھا کے اس کو پٹخا وہاں سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ نہیں کسی نے کھڑے ہونا, تو ایک آدمی پھر بھی کھڑا ہو گیا, کہا جاتا ہے رفع حاجت کے لیے, لیکن پھر وہ آندھی اس کو اڑا کے لے گئی. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بڑی بلا, کوئی ایسی آندھی آئی ہو, ڈیزرٹس میں کئی آندھیاں چلتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے سے بتا دیا تھا, لیکن کوئی نہیں اس نے سنا اور پھر ایسی نافرمانی کی, تو اس سے دیکھیں پھر اس کو نقصان ہوا. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے کچھ دیر پہلے نکلے رفع حاجت کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ بھی تھے. مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے, آپ دیکھیے گا کہ کہاں پہ پڑھا تھا. تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھے, ساتھ پانی لیا ہوا تھا, ایک برچھی سی لی ہوئی تھی, تاکہ وہ کیا کرتے تھے, برچھی وغیرہ آگے رکھ کے تو اس سے ذرا پردہ کر لیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے جاتے تو لوگوں سے کچھ دور نکل جاتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب فارغ ہو کے آئے تو انہوں نے پانی ڈالا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے, منہ دھویا, پھر آپ نے اپنے بازو اوپر کرنے چاہے, لیکن وہ جو جبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو لباس پہنا ہوا تھا اس کے بازو تنگ تھے, وہ اوپر نہیں چڑھ رہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اس جبے سے نکال کے پھر بازو دھوئے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا, جیسے ہماری کئی دفعہ سلیوز اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں وہ اوپر نہیں چڑھتی, تو اب اس کے اوپر آپ مسا نہیں کر سکتے, یاد رکھیے, آپ کو پھر شرٹ اتارنی پڑے گی اور پھر آپ کو بازو دھونے پڑیں گے وضو کرنے کے لیے. یعنی آپ مسا سر کے اوپر سے تو مسا ہوتا ہے, ساکس کے اوپر سے تو مسا ہوتا ہے, لیکن آپ کے بازوؤں کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد آپ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتارنے چاہے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو, میں نے اس وقت ان کو پہنا تھا جب میں طہارت سے تھا, پھر آپ نے ان کے اوپر ہی مسا فرما لیا. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر جوتے صاف ہیں تو اور آپ نے طہارت کے ساتھ ہی پہنے, تو چاہے چمڑے کے موزے ہوں, چاہے دوسرے آپ کے ساکس ہوں, چاہے جوتے ہوں, بعض دفعہ آدمی باہر ہوتے ہیں اور وہ انہوں وضو کر رہے ہوتے ہیں, جوتے ایسے ہوتے ہیں نہیں اتار سکتے, تو ان کے اوپر سے مسا کر سکتے ہیں. تو اس میں کچھ دیر لگ گئی ظاہر ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو صحابہ نماز شروع کر چکے تھے. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफों में पीछे खड़े हो गए, अंधेरा था तो लोगों को पता चल गया, फिर भी इसके बावजूद भी लोगों को पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, तो सब लोग पीछे हटने लगे। और इमामत कौन करा रहे थे? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ। आपको पता ना, ये शुरू के सहाबी हैं, शुरू में इस्लाम लाए थे, और इनका मकाम और मरतबा हज़रत अबूबकर सिद्दीक, हज़रत उमर, उस्मान वगैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इनके बराबर का है अब्दुर्रहमान बिन औफ का। तो वो आगे खड़े हुए थे, इमामत करा रहे थे, जब उनको पीछे कुछ खलबली सी मची हुई, कुछ के ऑफ सा कुछ महसूस हुआ, तो वो पीछे हटने लगे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा दिया कि आप वहीं रहें, तो उन्होंने वहीं पे रह के नमाज पूरी कराई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रकत रह गई भी थी, एक रकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे पड़ी थी। तो इससे भी पता चलता है कि एक वो सहाबी जिनके पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज पढ़ी, चाहे एक रकत ही क्यों ना पढ़ी हो, वो अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। तो इससे आपको इनका मकाम और मर्तबा भी मालूम हो गया। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनकी वहां पे वफात हो गई थी तबूक में, ठीक है, तो इनका नाम था ज़ुल्बजादैन। ज़ुल्बजादैन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद ये मुज़ैना कबीले से थे, इनका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। तो ये मक्का मदीना के दरमियान ये मुज़ैना कबीला था जहाँ पे ये रहते थे। इनकी वालदा की वफ़ात हो चुकी थी जिस वक़्त इनकी उम्र कोई 16-17 साल थी, और इनकी कफालत इनके चचा ने की थी। चचा बहुत मालदार था और उसने बड़ी सहूलत के साथ अपने यतीम भतीजे को रखा था, और अच्छा खाना, अच्छा लिबास, अच्छी रहाय, सब कुछ जो भी ये फरमाइश करते थे वो पूरी करते थे, और बल्कि खसूसी तौर पे इनके लिए दूसरे इलाकों से आला दर्जे का लिबास मंगवाते थे। तो इस तरह से ये ना बड़ी मतलब आसाइश में पले थे। तो इनकी बस्ती भी जो थी ये बुतों की पूजा करती थी, अलग अलग उन्होंने अपने बुत बनाए हुए थे। तो जिन दिनों मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहे थे, तो चूंकि इनकी बस्ती बीच में पड़ती थी, इसलिए आने जाने वाले काफिले यहाँ पे थोड़ी देर आराम करते थे, और कुछ काफले रात को भी यहाँ पे रहते थे। तो इसलिए ये जब मुसलमान ज़ाहिर यहाँ से गुजरते थे तो इनका इंटरेक्शन उनके साथ होता था, और उन्होंने इस बस्ती में जब भी क़याम करते थे तो ज़ाहिर इस्लाम की दावत देते थे। तो जब इनको दावत दी तो इन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया, और जब भी कोई सहाबा यहाँ से गुजरते तो उनसे कुरान करीम की कुछ आयात सीख लेते थे, याद कर लेते थे, और इनको कुरान से बड़ा शगफ था, कुरान याद करना इनका बड़ा शौक था। तो जब भी ये मतलब इंतज़ार करते रहते थे कि जब भी कोई काफ़िला गुजरे मैं कब उनसे कुरान सीखूं, सुभान अल्लाह। और जब इनको इनके जो चचा था उसको जब पता चला कि ये मुसलमान हो गए हैं, अल्लाह अकबर, तो उसने इनके ऊपर बड़ा जुल्म किया और इनको निकाल भी दिया, और बड़े इनके साथ यानी हार्ड टाइम रहा था। बाज़ जगह पे आता है कि हिजरत का चौथा साल शुरू हो चुका था, तो किसी ने इनको कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अभी तक इस बस्ती में क्यों हो, तुम हिजरत क्यों नहीं करते? तो कहने लगे, तुम्हारी बात तो ठीक है लेकिन मैं अपने प्यारे चचा को कैसे छोड़ जाऊँ, मैं उस वक्त हिजरत करूँगा जब मेरे चचा हाथ पकड़ कर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे हाथ पकड़ के और मुझे वहाँ पर लेकर जाएंगे, जब मैं उनके साथ जाऊँगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, मैं उससे पहले नहीं जा सकता। तो छुप छुप के जाके ये नमाज पढ़ा करते थे सहरा में जाके, और अपने चचा को भी बड़ी प्यार से हिकमत से समझाते थे कि ऐसे ऐसे एक शख्स आए हैं और कैसी वो बातें करते हैं, और आयात कुरान की सुनाते थे, लेकिन वो नहीं मानता था। जवाब में शुरू में तो उसको नहीं पता था तो वो कुछ नहीं कहता था, लेकिन जाहिर है वो उसके दिल के अंदर वो चीज़ नहीं थी जैसे इनमें थी। अपने चचा से ये बड़ी मोहब्बत करते थे, और फिर एक दिन इन्होंने कहा कि चचा जान, मैंने मुद्दत तक आपका इंतज़ार किया, मेरा ख्याल था कि आप इस्लाम ले आएंगे मगर आपने इस्लाम को नहीं कबूल किया, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया। अब वो तो उसको तो यकीन ही नहीं आया कि ये भी कभी हो सकता है। वो इतना शदीद गुस्से में आगे कहने लगा, मैंने तुझे पाला पोसा है, तुम्हारे साथ ये मैंने नेकियां की हैं, तुम ये कर रहे हो मेरे साथ। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं तुम फौरन इस्लाम को छोड़ दो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं। तो उन्होंने कहा मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस दीन को छोड़ने का। तो उसने कहा कि फिर बस ठीक है, फिर हर चीज तुम्हारे लिए खत्म है, मैं तुम्हारी सारी सहूलतें वापस ले रहा हूं, सब कुछ ले रहा हूं, हत्ता कि ये तुमने जो कपड़े भी पहने हुए ना इनको भी उतार के जाओगे। तो उन्होंने कहा कि जैसे आपकी मर्जी, मैं अल्लाह का और उसके रसूल के मुकाबले में किसी चीज को अहमियत और फौकियत नहीं दे सकता, मैं हर नेमत को ठुकरा सकता हूँ अल्लाह के रसूल के बदले, आप मुझसे ले लें वापस हर चीज। तो वो चाचा गुस्से से आग बगोला हो गया, उसने इनके कपड़ों को फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, तकरीबन ये नंगे हो गए थे। जमीन पर उस वक्त दो टाट के टुकड़े नजर आए, जैसे मतलब वो सीधा से दो कपड़े थे, तो जल्दी से एक टुकड़े से अपना सतर छुपा लिया और दूसरा अपने कंधे पर डाल लिया। देखें आप यानी सोचें कि क्या इनकी हालत होगी उस वक्त, कितनी बड़ी कुर्बानी इन्होंने दी। तो इन्होंने इधर उधर से चीजें मांगी लेकिन किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। तो ये सतर छुपाने के लिए इनके पास बस ये दो कपड़े थे और इन्हीं दो कपड़ों में इन्होंने हिजरत की थी। आज तक सोचें ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले नहीं थे कभी, पैदल ही मदीना चल पड़े, क्योंकि जाहिर है कुछ कोई ना सवारी ना कोई कुछ, और बेसहारा जितने भी मुहाजरीन होते थे उनके लिए रेजिडेंस कौन सी थी, मस्जिद नबी बस। तो ये अब्दुल्ला फिर बने, अब्दुल उज्जा से अब्दुल्ला इनका नाम रखा गया, और ये मदीना पहुंचे तो रात का वक्त था, तो मस्जिद नबी में ही लेट गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, सहाबा की तरफ देखा तो देखा एक अजनबी आदमी मस्जिद नबी में असहाबे सुफा के चबूतरे पर पड़े हुए हैं। ये तकरीबन उस वक्त इनकी उम्र 21 साल थी। तो पूछा कि तुम कौन हो, कहने लगे मैं अब्दुल उज्जा हूँ। तो पूछने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुमने टाट क्यों पहने हुए ये, तो उन्होंने पूरी अपनी दास्तान सुनाई कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार किया और दुनिया की हर नेमत को मैंने ठुकरा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज से तुम्हारा नाम अब्दुल उज्जा नहीं है, अब्दुल्ला है, जुल बजादईन। जुल बजादईन का मतलब क्या, टाट के दो टुकड़ों वाला। तो यही नाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला बस ये इनकी पहचान बन गया। बस ये बड़े खुश हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नाम दे दिया। तो अब ये मस्जिद नबी में रहते थे, बुलंद आवाज से पूरे जोशो खराज से कुरान की तिलावत करते थे। तो जब इतनी इनको मोहब्बत थी ना कुरान करीम के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया था मेरे दरवाजे के करीब ही रहना, तो वो वाकई इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के दरबान बन गए, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहते थे। तो जब ये ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते थे, तो एक दिन हजरत उमर ने फरमाया कि क्या तुम रियाकारी के लिए इतनी बुलंद आवाज में पढ़ते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे जवाब दिया, नहीं वो तो अल्लाह के सामने आहोजारी करने वालों में से एक है। सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला मस्जिद में रहते थे, बस कुरान पढ़ते रहते थे और बस अपना इसी तरह वक्त गुजारते थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया था उमर इसको छोड़ दो, ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह और उसके रसूल की खातिर हिजरत करके आया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए रवाना हुए ना, तो उस वक्त इनके अंदर इतना जज्बा शहादत था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, दरख्वास्त की कि मेरे लिए दुआ करें मुझे इस जंग में शहादत नसीब हो। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह मैं इसका खून कुफार पर हराम करता हूँ। उन्होंने अर्ज किया यार रसूल अल्लाह, मेरा तो ये इरादा नहीं था, मैं तो शहादत चाहता था। आपने फरमाया तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले हो, अगर तुम्हें बुखार भी हो जाता है तो तुम बुखार से भी अगर वफात पा जाते हो तो वो भी शहादत है तुम्हारे लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे क़याम फरमा रहे थे, अब बताए जंग तो हुई नहीं, तो आपको खबर मिली कि इस तरह से वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तभी मौत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर को लेकर कफन दफन का बंदोबस्त करने लगे। सर्द रात थी उस वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद को, आपने सुना होगा, उनको इतला मिली इस तरह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी शहीद हो फौत हो गए। तो आधी रात का टाइम था, वो उठे, और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शदीद मोहब्बत करते थे, और ये आए तो इन्होंने देखा कि वो सहाबी को दफन करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। खूब अंधेरा था, बस हल्की सी रोशनी उनको नज़र आ रही थी, तो देखा कि बड़ा अजीब सा मंज़र है, क्योंकि हज़रत बिलाल एक छोटी सी मशल सी पकड़े हुए खड़े हैं, जिसकी रोशनी में कब्र खोदी जा रही है, और अबू बकर और उमर के हाथों में किसी की लाश है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे हैं। अब उनको मालूम हुआ कि ये ज़ुल्बजादैन की मैयत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपने भाई को मेरे करीब लाओ, अपने भाई को मेरे करीब लाओ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाश थमा रहे हैं, और आप फरमा रहे हैं भाई को नरमी से पकड़ो, ज़रा मोहब्बत से, नरमी से, प्यार से, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बड़े मोहब्बत करते थे ना ज़ुल्बजादैन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन सहाबी को अपने हाथों से उठाया, बड़ी मोहब्बत से कब्र में उतारा, फिर अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद फरमाए और फरमाया, ए अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाता हूँ, मैं ज़ुल्बजादैन से राजी रहा, ए अल्लाह तू भी इससे राजी हो जाना, मैं इससे राजी था, अल्लाह तू भी इससे राजी हो जाना, ए अल्लाह इस पर अपनी रहमत फरमाना, ये कुरान करीम की तिलावत करने वाला था, ये तेरे रसूल से मोहब्बत करने वाला था। अब्दुल्ला बिन मसूद ये देख रहे हैं तो बेइख्तियार कह उठे, काश इस कब्र में मैं होता, काश इस कब्र में मैं होता। यानी उनको इतना रश्क आया इनकी किस्मत पर ज़ुल्बजादैन की, कि ये कितने खुश नसीब हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अल्लाह मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जाना। अल्लाह, तो इससे आपको पता चलता है कि सहाबा कराम की कैसी तड़प होती थी, कैसी तलब होती थी इस जगह पे होने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भी ऐसी बात कह दें कोई। अल्लाह अकबर। तो ये कुछ वाकयात उस वक्त के थे। इसी तरह हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापसी के लिए रवाना होते हैं। जाहिर है अब यहाँ पे रहने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि ना कोई जंग है आगे, ना कोई और चीज़ नज़र आ रही है, तो जितनी देर क़याम फरमाया ये सब थोड़े इवेंट्स हमें पता चलते हैं, और उसके बाद हमें ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के लिए रवाना हो गए। जो हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि फिर वापसी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं, तो मदीना को वापसी 20 दिन के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वापसी की राह ली। रास्ते में आते जाते 30 दिन लगे, यानी 15 डेज जाना और 15 आना अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल कुल 50 दिन मदीना से बाहर रहे। रास्ते में लश्कर एक घाटी से गुजरा। अब ये कुछ आपको बातें पता चलती हैं जो मुनाफिकीन की तरफ से हुई। हमने पहले भी पढ़ा था कि मुनाफिकीन ने कैसे बातें बनाई रास्ते में, किस तरह से उन्होंने तकलीफ़ दे बातें की। जब बारिश भी मैंने आपको बताया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा नहीं जी फलां सितारे की वजह से हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट गुम हो गया, तो उन्होंने कहा लो ये हमें आसमान की तो बातें बताते हैं कि आसमान से ये वही उतरी, और वहाँ की बातें बताते हैं गैब की, और इनको ये नहीं पता कि इनका ऊँट कहाँ है, तो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बता दिया था। इसी तरह एक और भी वाक्य आता है, वो मैं पहले आपको बता दूं फिर इसके ऊपर चलते हैं, कि मुनाफिकीन अपने ग्रुप बना के बैठे रहते थे और इस तरह बातें करते थे, तो वो कहने लगे, आपस में हंस रहे थे, कह रहे थे रूम और फारिक्स तक कह रहे हैं हम पहुंचेंगे, वहां तक को हम फतह करेंगे, ऐसे करेंगे, और हंसने लगे कि ये इनकी हालतें हैं फतह करने की। तो एक ने कहा इन लोगों को तो देखो ये कुरान पढ़ने वाले हैं और हैं कितने बुजदिल, और खा खा के देखो कितने पेटू हुए हैं, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस तरह की बातें हम आज भी देखते हैं ना, कई लोग कुरान पढ़ने वालों को किस तरह से मजाक करते हैं, किस तरह से उनकी बातों को हकीर करते हैं, और कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि किसी तरह कोई बात मिल जाए कि हम इनके ऊपर लगाएं। तो ये तरीकाकार मुनाफिकीन का था। जब आप खुद कुरान वाले हैं, अगर आप खुद भी अपने आप को समझते हैं कि हम सब मुसलमान कुरान वाले हैं, कोई ये ज्यादा कुरान वाले तो नहीं, क्या वो जो कुरान पढ़ना शुरू हो जाए वो कुरान वाला ज्यादा है और बाकी मुसलमान के ऊपर कुरान कुछ नहीं है? आप ये देखें, सब ही कुरान वाले, जो इस्लाम में एंटर हो गया क्या कुरान उसका नहीं है? इसके बावजूद ये हाल था कि ये लोग, यानी इसे ही पता चलता है कि वो अपने आप को बाहर समझते। देखो ये कुरान पढ़ते हैं और इनका हाल देखो जरा क्या है। बहुत सिमिलर आपको लगेगी आज की बातें भी इसी किस्म की लोगों के मुंह से, जो जैसे मुनाफिकीन के लिए बात होती थी वो जैसे बातें करते थे। तो एक सहाबी रसूल ने ये बात सुन ली तो उन्होंने कहा, दुश्मन खुदा तो झूठा है, कैसी बात कर रहा है? और उन्होंने कहा कि मैं जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत करता हूँ तुम्हारी। अब वो सहाबी अपने ऊंट पे सवार हुए और वो ऊंट दौड़ाने शुरू हो गए। तो अब इस मुनाफिक की जान के लाले पड़ गए। उसने कहा ये तो मेरी जाके शिकायत लग जाती। अब उनको बुजदिल भी इतने थे कि उनसे अब ये भी होता था कि हम वहां पे भी गुड बुक्स में रहे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी बड़े अच्छे बने रहे, इसीलिए तो बहाने कर करके करते थे। तो वहां पे भी अच्छे रहे, साथ उस उनकी तरफ भी नहीं है ना, जैसे कुरान कहता है ना, इधर के तो ना उधर के, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाएं, इस्लाम में सही तरह दाखिल हो जाएं, वो भी नहीं, दूसरी तरफ कुफर की तरफ चले जाएं, वो भी नहीं। अब देखें, अब उसको ये पड़ गई कि ओहो ये तो मेरी शिकायत कर देगा। वो भी अपने ऊंट पे सवार हुआ और दौड़ लगा दी उसने भी। जब वो दोनों दौड़ लगाते हुए, अब वो लश्कर कितना बड़ा है, 30,000 का लश्कर चल रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं आगे फ्रंट में थे और ये लोग कहीं पीछे थे। अब ये दौड़ लगाते हुए आ रहे हैं, ऊंटों को दौड़ाते हुए आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही उतरनी शुरू हो गई। मैंने आप लोगों को कहा था ना सूरह तौबा, आप पढ़ के आइएगा, तो वो जो वही उतरी उसके अंदर आप हाईलाइट कर लें, ये आयात हैं, आयत नंबर 64 और 65। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले कि वो वहां पहुंच के कुछ बोलते या कुछ कहते, वो सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो जल्दी से छलांग लगाई उस मुनाफिक ने अपने ऊंट के ऊपर से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम तो बस मजाक कर रहे थे, जैसे नहीं कि हम यार जस्ट किडिंग अराउंड, हम तो बस खेल रहे थे, बस ऐसे मजाक कर रहे थे, मजाक को मजाक समझा ही नहीं गया यानी। तो अल्लाह ताला ने जो आयात उतारी थी इससे पहले कि वो कुछ बोलता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात तिलावत फरमा रहे हैं, जब वो ये कह रहा है कि हम तो बस मजाक कर रहे हैं, तो आयात क्या है, यहदरुल मुनाफिकूना, डर रहे हैं मुनाफिक, अंतु नजल अलैहिम सूरत, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई सूरत ना उतर आए इनके बारे में, जिसके अंदर जो कुछ इनके दिलों में है वो बता दिया जाए। और कुल, कह दीजिए, इस तहजीउ इन्नल्लाह मुखरिजुम्मा तहजरून वला इंसअलता हूं, और अगर तुम सवाल करो इनसे, तुम मजाक करते रहो, अल्लाह ताला निकाल देगा, जो अल्लाह जाहिर कर देगा, जो ये जो इनके दिलों के अंदर है अल्लाह ताला तुम्हें जाहिर कर देना, और अगर तुम इनसे पूछोगे ला यकूलुन्ना, तो वो जरूर कहेंगे इन्नमा कुन्ना नखूदु वनलअब, तो हम तो बस खेल तमाशे बस ऐसे ही कर रहे थे, वी वर जस्ट जोकिंग अराउंड, हम तो बस ऐसे ही ये बात कर रहे थे। तो आप कह दें ऐ नबी, क्या अल्लाह और उसका रसूल ही है रह गए कि जिनके बारे में तुम मजाक करते हो, क्या वो ही रह गए हैं मजाक के लिए? ला ताताजिरु, आज तुम कोई माजरत ना करो, कद कफर तुम बादा ईमानिकुम, तुमने कुफर कर दिया ईमान के बाद। अब आपकी आयात खोल कर देखिएगा, ये आपको 10वें पारे में सूरह तौबा में मिल जाएंगी। तो इससे हमें पता चला कि कुछ चीजें मजाक के काबिल नहीं होती, आप उनके ऊपर मजाक नहीं कर सकते, वो आप लिमिट्स क्रॉस कर रहे होते हैं अगर आप उसमें मजाक करें। और ये चीजें शायर अल्लाह ऐसे होते हैं, अल्लाह रसूल उसके दीन का मजाक करना ऐसा होता है कि इंसान को बाज दफा कोफर तक ले जाता है, यानी वो ईमान से खारिज हो जाता है। अगर उसको दोबारा मुसलमान होना है तो उसको दोबारा कलमा शहादत पढ़ना पड़ेगा। यानी यहां पे ये देखें आप, ये आयत नंबर 66 का मैं आपको हिस्सा सुना रही, ला ताताजिरु, تم نہ معذرتیں کرو، قد کفر تم بعد ایمانکم، تم نے کفر کر لیا ایمان لانے کے بعد تم اب کافر ہو گئے. یعنی انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ ہم کافر ہو گئے ہیں یا ہم ایسے ہیں، کوئی بتوں کے آگے نہیں جھک گئے تھے وہ. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، کافر بنا دیتی ہے. اس لیے ان چیزوں میں بے حد احتیاط کرنی چاہیے. اللہ، رسول، دین، جنت، جہنم، قیامت یا اور اللہ کے شاعر کے بارے میں اس قسم کے مذاق اڑانے سے پرہیز کرنا چاہیے. قرآن کے بارے میں یعنی جو بعض دفعہ ان چیزوں کو اتنا لائٹلی لوگ لیتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ ہم مطلب ان کے اوپر کوئی زبان درازی کر نہیں سکتے، ہماری کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر کوئی بات کر سکے. تو معذرت کے ساتھ، کافر تو کرتے ہی کرتے ہیں کوئی باتیں ایسی، لیکن ہمارے مسلمان بھی بعض اس چیز میں کم نہیں ہیں. وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ مذاق کرنا ہمارا، ہمیں کون روک سکتا ہے، ہم بس مسلمان ہیں، ہم جو مرضی کہتے رہیں. تو یہ چیزیں آف لمٹس ہیں، ان تک نہیں جانا چاہیے. تو یہ آپ آیات دیکھ لیجئے گا پھر اس کے اندر، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی وہاں پہ ہوا. اسی طرح راستے میں مسلمانوں نے شکایت کی کہ ہماری سواریاں بہت تھک گئی ہیں اور پانی اور اس کے لیے بہت زیادہ، یعنی وہ پانی کی کمی تھی تو پیاس سے نڈھال ہو رہی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ. تو صحابہ کرام اپنے اونٹوں کو لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ ہاتھ پھیرتے جاتے اور دعا فرماتے جاتے تھے. اس کے بعد جب یہ اونٹ چلے تو وہ اتنے زیادہ مطلب انرجیٹک ہو گئے تھے کہ وہ دوڑ رہے تھے، اور صحابہ کو ان کو پکڑ پکڑ کے رکھنا پڑا تھا، اتنا تیز وہ دوڑ رہے تھے. ایسا بھی ایک بیچ میں راستے میں ہوا. ہم اب دیکھتے ہیں یہاں پہ منافقین کی اور سازش. منافقین جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے کسی غزوے میں بھی، تو اس کے اندر کچھ الٹا ہی کچھ کر کے آتے تھے، کبھی بھی ان سے خیر نہیں پہنچی تھی. آپ نے دیکھا جیسے پہلے عبداللہ بن ابئی نے، وہ بھی اس وقت بھی غزوے کے لیے ہی نکلے تھے جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگا دی تھی. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بک میں دیکھیں، راستے میں لشکر ایک گھاٹی سے گزرا، لوگوں نے وادی کی راہ لی. یعنی ایک گھاٹی تھی، تنگ سا راستہ تھا جیسے پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے، لوگوں نے وادی کی راہ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف حضرت عمار تھے جو اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے. حضرت عمار بن یاسر جو تھے وہ اونٹنی کی نکیل تھامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے. یعنی صرف دو صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس وقت موقع غنیمت جان کر 12 منافقین نے قتل کے ارادے سے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کے انتہائی قریب آ گئے. انہوں نے سوچا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دے دیں گے یہاں پہ گھاٹی میں. اب ایک تو اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، دوسرے یہ چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے، یعنی یہ چہروں کو چھپائے ہوئے تھے. آپ نے حضرت حذیفہ کو بھیجا کہ ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کا ارادہ کیا ہے. اب انہوں نے چہرے بھی کور کیے ہوئے اور بد ارادے سے آئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو جب اس وقت حکم دیا، جب ان کا یہ حرکت دیکھ کر، تو انہوں نے ان کے سواریوں کے چہروں پر ڈھال سے ضرب لگائی. انہوں نے ضرب لگائی تو اللہ نے منافقین پر روب ڈال دیا اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے. یعنی اب آپ کو پتا ہے کہ بزدل تو تھے ہی نا، اب ان کو یہ ہوا کہ کہیں پتا نہ چل جائے، اب جان بھی نکلی بھی ساتھ نقصان بھی پہنچانا ہے. دیکھ رہے ہیں ایسی جو دو رخی زندگی ہوتی ہے نا، وہ انسان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، اس بندے کے لیے خود بھی عذاب ہوتی ہے. یا تو ایک طرف ہو جائے وہ، کسی طرف کی بھی راہ لے، لیکن جب وہ ایک طرف نہیں ہوتا، اس نے ادھر کو بھی راضی کرنا ہے، ادھر کو بھی، پتہ نہیں کس طرف سے مفاد ہو مجھے حاصل ہو جائے بعد میں. یہ لوگ ایسے ہی تھے. اسی وجہ سے منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ یہ ساتھ رہ کے نقصان پہنچانے والے تھے. دشمن کا تو انسان پھر بھی الرٹ رہتا ہے کہ یہ دشمن ہے، لیکن جو آستین کے سانپ ہو جو اپنے اندر رہتے ہوں اور پھر آپ کی جڑیں کاٹے نا، وہ زیادہ بڑی دشمنی کرتے ہیں. ان سے آپ ہوشیار بھی نہیں ہوتے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، लेकिन जब वो अपने ही काटने लगते हैं तो वो बहुत तकलीफ दे भी होता है और ज्यादा वो बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो जब वो तेजी से भागने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफा को इनके नाम भी बतलाया और इनका इरादा भी। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनको राजदान कहा जाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और को नहीं ये नाम बताए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफा से पूछा कि वो कौन लोग थे, तो उन्होंने फरमाया कि मैं तो नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनके नाम बताए। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तले कर दिया था इनके बारे में कि ये कौन है, और सारी जिंदगी ये राज हज़रत हुज़ैफा के सीने में रहा, उन्होंने किसी का भी नाम कभी भी बताया नहीं कि ये होते हैं राजदान। बाद में हजरत उमर जो थे वो हजरत हुजैफा को देखा करते थे कि ये किसी जनाजे में अगर शरीक होते हैं तो शरीक होते थे, यानी इसका मतलब है कि ये मुनाफिक नहीं। अगर वो किसी जनाजे में नहीं जाते थे तो हजरत उमर भी नहीं जाते थे, समझ जाते थे अच्छा ये मुनाफिक है, क्योंकि उनको सिर्फ पता था। इसी तरह हजरत उमर इनके पास ही जाके पूछा करते थे कि मेरा नाम तो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। अल्लाह अकबर, कहीं मैं भी तो मुनाफिकीन की फहरिस्त में शामिल नहीं हूं। सुभान अल्लाह। मस्जिद दरार का इन्हिदाम, यानी इसको गिराना, इसको अबॉलिश करना। मुनाफिकीन ने जर रसानी, कुफर, मोमिनीन में तफरीक और अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वालों को घात की जगह फराहम करने के लिए कुबा में एक मस्जिद बनाई थी। इसका मैंने किस्सा आपको पहले बताया कि उन्होंने मस्जिद की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी और उसको कंप्लीट कर लिया था, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की थी कि आप इस मस्जिद में उनके लिए नमाज पढ़ दें। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के लिए तैयार होते रहे थे। आपने फरमाया कि अभी तो हम सफर पर हैं, अलबत्ता वापस आए तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, यानी हम फिर यानी उस वक्त पढ़ लेंगे। लेकिन जब आप तबूक से वापसी में जी अवान में उतरे और मदीना एक दिन या इससे भी कम फासले पर रह गया था, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नाजिल होकर मस्जिद की असल हकीकत बताई और नमाज पढ़ने से मना किया। चुनाचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर इसे जला और मिसमार करा दिया। ये भी आयात आप उसमें देख सकते हैं सूरह तौबा में। इससे हमें पता चलता है कि एक मस्जिद जो चाहे उसका नाम मस्जिद रखा हो, लेकिन अगर वो फसाद की जगह है, अगर वो मुसलमानों में तफरीक की जगह बन रही है, अगर वो ऐसी जगह बन रही है जिससे मुसलमानों ही के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का इरादा है, तो अगर उसको जला दिया जाए और या उसको गिरा दिया जाए, तो कोई ये नहीं कहना चाहिए हाय हाय मस्जिद को जला दिया, मस्जिद को गिरा दिया या ख़त्म कर दिया। ये ऐसी जगह को फिर मस्जिद कहलाने का भी हक नहीं। उन्होंने तो इसका नाम नहीं मस्जिद जरार रखा था, जाहिर है बाद में ही अल्लाह ताला ने इसको ये नाम दिया मस्जिद जरार, जिसे जरर वाली मस्जिद, जो नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद है। तो ऐसी फिर जगह को नहीं रखना चाहिए और उसको मस्जिद कहलाने के लायक भी नहीं है। अहले मदीना की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल। जब मदीना के आसार दिखाई पड़ने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रहा ताबा और ये रहा ओहद, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और जिससे हम मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना दूर से दिखने लगा, तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के करीब पहुँच कर यानी ये फरमाया था कि ये तौबा है, यानी ये तौबा मदीना को ही कहते थे, और ये रहा ओहद, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। इस पहाड़ की गवाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दी थी कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ये भी हमें पता चल गया जब मैं गई थी हज पे, तो इस पहाड़ को देख के यही बात मुझे ये याद आ रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ से मोहब्बत करते थे। कितना खुशकिस्मत पहाड़ कि जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि हम इससे मोहब्बत करते हैं। हमें अपना तो कुछ नहीं पता है कि हम किस काबिल हैं, किस कैटेगरी में उस दिन होंगे कयामत के दिन, लेकिन इस पहाड़ को तो दुनिया में ही ये पता चल गया और खुशखबरी मिल गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे मोहब्बत है। इतना प्यार आ रहा था इस पहाड़ के ऊपर कि ये कितना खुशकिस्मत है, ये कितना खुशकिस्मत है, और ये भी कि इसको मेरे नबी से मोहब्बत है, इस पहाड़ को, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। इससे पता चलता है कि बेजान चीजों में भी एक हिस होती है, एक उनको भी चीज़ों का थोड़ा पता था। देखिए आप के पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे नबुवत से पहले भी। हाँ, तो इन चीज़ों में भी एक हिस्सा है। उधर लोगों ने आपकी आमद की खबर सुनी तो इस्तकबाल में औरतें और बच्चे बच्चियां निकल पड़ी। और ये कहाँ पे निकल पड़े थे? सनियातुल वदा में। मैंने आपको बताया था सनियातुल वदा मदीना से निकल के जगह थी, वो एक पहाड़ी सी थी जिसपे खड़े होके यानी लोग आने वाले काफलों का जब पता चलता था कोई काफला आ रहा है दूर से पता चल गया, या काफले वाले एक बंदे को दौड़ा देते थे कि जाओ पहले जाके शहर में इतला कर दो कि हम पहुंच रहे हैं, तो लोग फिर यहाँ पे खड़े होके वेलकम करते थे। और इसी तरह जब जाने वाले होते थे कोई तो फिर उनको यहां से आके अलविदा कहते थे। तो सनिया मतलब पहाड़ी और अलविदा विदा करने की पहाड़ी। जैसे हम भी एयरपोर्ट जाते हैं ना लोगों को छोड़ने के लिए, तो एक जगह तक हम जा सकते हैं फिर उसके आगे नहीं, तो फिर हम वहीं से मिल लेते हैं फिर वहीं से उनको खुदाफिज कर लेते हैं। तो उनके लिए वो समझ लें जैसे एयरपोर्ट तक आना हो गया। तो उधर लोगों ने आपकी आमद की खबर सुनी तो इस्तकबाल में निकल आए। यानी ये भी एक सुन्नत है कि किसी के इस्तकबाल के लिए आप लोग, जैसे आप एयरपोर्ट जाते हैं या आप घर से बाहर जाते हैं या आप कहीं जाते हैं लोगों के इस्तकबाल करने के लिए, खास खास मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। औरतें बच्चे बच्चियां निकल गए निकले और ये शेर गुनगुना रही थी वो, ये औरतें बच्चियां के ताला अल बदरु अलैना मिन सनियतिल वदा वजब शुक्रु अलैना मा दा लिल्लाहि दा, के हम पर सनियतुल वदा से बदर तलू हुआ है, यानी 14वीं का चांद फुल मून मिन सनियतिल वदा से, और वजब शुक्रु अलैना हम पे तो शुक्र वाजिब हो गया मा दा लिल्लाहि दा, जब तक पुकारने वाला पुकारता रहेगा पुकारेगा अल्लाह को तब तक हम पर शुक्र वाजिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मस्जिद में दाखिल हुए, 2 रकत नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कार ये था, जब भी सफर से वापस आते थे सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे और वहां पे 2 रकत नमाज पढ़ते थे। ये सुन्नत भी अब भूल चुके हैं लोग, इस सुन्नत को भी जिंदा करने की जरूरत है। और लोगों के लिए बैठ गए, अब देखें एक सफर से आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस वक्त ही मस्जिद नबी में बैठ गए। अब आगे जो किस्सा है वो चूंकि एक लंबा किस्सा है तो इंशाल्लाह ताला उसको हम नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। और यहाँ तक के आपको वाकयात पता चल गए, अब वो 3 मोमिनीन का किस्सा हम देखेंगे जो कि पीछे रह गए थे। बहुत ही प्यारा सीरत का ये बाब है जो तबूक का भी है और आखिरी सफ़र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसके बाद तो हज का ही सफ़र है, इसके बाद कोई गज़वा नहीं है। ठीक है, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.